आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। सतगुरु हो सतगुरु हो। महंत रामदास भी छींकने खांसने और जमाही लेने के समय महंत सेवादास जी की तरह चुटकी बजाते हैं। सतगुरु हो सतगुरु हो कहते हैं और आंखें स्वयं ही बंद हो जाती हैं। भजन बीजक पाठ और सत्संग को अब लक्ष्मी संभालती है। महंत रामदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सतगुरु वचन की गंभीरता के तह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मंजड़ी पर तो उनका पूरा अधिकार है। यूं तो मंजड़ी भंडारी भी बजाता है, लेकिन कोठारन लक्ष्मीदासिन उसके ताल पर गड़बड़ा जाती है। तब महंत रामदास जी भंडारी के हाथ से बंजड़ी ले लेते हैं। लक्ष्मी मुस्कुराकर गाने लगती है। संतो हो करूं बहिया बल आपनी छाए बिरानी आस, संतो हो जिही अंगना नदिया बहे सो कस मरे प्यास, हो संतो सो कस मरे प्यास। सो कस मरे प्यास, महंत रामदास के आंगन में नदी बह रही है और वह प्यास से मर रहे हैं। सतगुरु वचन में कहा है, जस खर चंदन लादे मारा परमिल वास न जानो गमारा। परमिल वास महंत रामदास को नहीं लगती, सो बात नहीं, परमिल वास से उनका भी मन मत हो जाता है, लेकिन वो क्या करें। एक दिन मुंह से निकल गया था, लक्ष्मी जरा इधर आना। तो बस चार घंटे तक कोठारिन ने सतगुरु वचनामृत की झड़ी लगा दी थी। अंतर ज्योति सबद इकनारी हरि ब्रह्म ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भंग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदि न अंता। महंत साहेब, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए, यह आपके पूर्व जन्म का पुण्य है कि आपको महंती की गद्दी मिली है, नहीं तो आपके जैसे लोगों को भैंस चराने के सिवा और कोई काम नहीं मिल सकता। आप मेरे गुरु बेटा हैं, मैं आपकी गुरु माई। एक डेढ़ महीने में ही महंत रामदास जी का कलेवर बदल गया है। लक्ष्मी बड़े जतन से सेवा करती है। दूध मक्खन और ताजे फलों के सेवन से महंत साहब के श्यामल मुखमंडल पर भी लाली दौड़ गई है। पेट जरा बाहर की ओर निकल रहा है और तन का ताप भी कभी कभी मन को बड़ा बेचैन कर देता है। लक्ष्मी सतगुरु वचनामृत बरसाकर शांत करने की चेष्टा करती है। सतगुरु वचनामृत से भी बढ़कर तन के ताप को शीतल करती है कालीचरण की याद। कालीचरण रोज मठ पर एक बार थोड़ी देर के लिए ही जरूर आता है। कभी पार्टी के लिए चंदा, ऑफिस घर बनाने के लिए बांस खड़ मांगने आता है। लक्ष्मी कहती है, कालीचरण असल न्यायी आदमी है। गांव के सभी बड़े लोग सिर्फ कहने को बड़े हैं। काली बाबू का सुझाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोग अब इतने कुटिल हो गए हैं कि सीधे लोगों की यहाँ गुजर नहीं, फिर स्वभाव में जरा कड़ापन तो सुपुरुष का लक्षण है। महंत रामदास को पहले कालीचरण पर बड़ा संदेह था। जब वह मठ पर आता तो महंत साहब छिपकर लक्ष्मी और काले की बातें सुनते थे, बांस की टट्टी में छेद करके देखते थे, लेकिन कालीचरण हमेशा लक्ष्मी से चार हाथ दूर ही हटकर खड़ा रहता था। उसकी बोली में भी माया की मिलावट नहीं रहती थी। लक्ष्मी से बातें करते समय कभी उसकी पलकें शर्माकर झुकती नहीं थी। बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है रामदास ने। कालीचरण को बस अपनी सोशलिस्ट पार्टी की जरूरत है। लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को वो औरत की तरह प्यार करता है, उस पर संदेह करना बेकार है। लेकिन बालदेव जी, वो तो आजकल आते ही नहीं, उनकी नजर बड़ी मैली है। लक्ष्मी बालदेव जी को भूली नहीं है, कहती है साधु स्वभाव के पुरुष है, किसी का चित्त दुखाना नहीं जानते। बालदेव जी मठ पर नहीं आते हैं, कहते हैं लक्ष्मी दासिन ने हिंसाबाद करवाया है मठ पर, मठ पर नहीं जाएंगे। बहुत सीधे हैं बालदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। महंत रामदास जी सोच विचार कर देखते हैं, कालीचरण के डर से ही वो प्यासा है, कोई बात हुई कि लक्ष्मी उससे कह देगी। और उसके बाद चादर टीका के दिन कालीचरण और उसके गणों ने जो कांड किया था उसे भूलना मुश्किल है, और उन्हीं की बदौलत तो रामदास महंत बना है। माना कि कालीचरण के बल से उसे महंती मिली है, इसका ये अर्थ नहीं कि कालेचरण मठ के सभी मामलों में दखल देगा। इंसाफन महंत की गद्दी पर तो उसका अधिकार था ही। यदि कल कालेचरण कहे कि गद्दी पर तुम्हारा हक नहीं तो क्या वो मान लेगा? महंत रामदास जी धीरे से उठते हैं, दबे पांव लक्ष्मी की कोठरी के पास जाते हैं। किवाड़ी खुली है?
नहीं, बंद है।
महंत साहब बाहर से भी किवाड़ की छिटकनी खोलना जानते हैं, पतली सी लकड़ी फंसाकर खोलते हैं। लक्ष्मी अब किवाड़ में ओखली नहीं लगाती है। लक्ष्मी सोई है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी उसकी सूरत चमक रही है।
कौन? रामदास? रामदास हाथ छोड़ो, बैठो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके, माया ने तुम्हें भी अंधा बना दिया। माया से कोई परे नहीं, माया को कोई जीत नहीं सकता।
महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे।
तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो, अब भी चेतो।
अब चेतने से फायदा नहीं, मुझे सरग नहीं चाहिए, इस नरक में पहली बार नहीं आया हूँ।
लक्ष्मी को बचपन की यादों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर बिछावन पर से उठना चाहती है, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथी चिलम गांजा फूका है।
मैं तुम्हारी गुरु माई हूँ रामदास।
कैसे गुरु माई? तुम मठ की दासिन हो।
महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तू मेरी दासिन है। चुप कुत्ता।
लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर जोर से थप्पड़ लगाती है। दोनों पांवों को जरा मोड़कर पूरी ताकत लगाकर रामदास की छाती पर मारती है। रामदास उलटकर गिर पड़ता है।
सतगुरु हो। संतों अचरज भौएक भारी, पुत्र धयल महतारी, एके पुरुष एक ही नारी, ताके देख बिचारी।
भंडारी, भंडारी,
सरकार पानी लाओ।
लक्ष्मी थर थर कांपती है। महंत सेवादास की दम तोड़ती हुई मूर्ति उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है।
नहीं, मरा नहीं, भंडारी कहता है।
महंत साहब को फिर मिर्गी की बीमारी शुरू हुई। कल रामपुर मठ से जो साधु आया है, मिर्गी की दवा जानता है, कल ही दिलवा दीजिएगा।
सतगुरु हो।
महंत साहब को बुखार है, छाती में दर्द है, डॉक्टर साहब ने मालिश का तेल भेजा है। लक्ष्मी महंत साहब की छाती पर तेल मालिश कर रही है।
महंत साहब कराह रहे हैं।
सतगुरु हो, अब नहीं बचेंगे, हमको काशी जी भेज दो कोठारिन, हम अपने पाप का प्राचित करेंगे, हमको जाने से ही क्यों ना मार दिया। अरे सतगुरु हो।
जय हिंद कोठारिन जी।
जय हिंद। आइए बालदेव जी, बहुत दिन बाद।
रामदा, महंत साहब को क्या हुआ है?
बुखार है, छाती में दर्द है।
दर्द है? पुराने गाय के घी की मालिश कीजिए।
पुरानी गाय का घी अर्थात गाय का पुराना सड़ा घी सुनते ही लक्ष्मी को मिचली आने लगती है। महंत सेवादास को भी जब दमे का दौरा होता था तो गाय का घी की ही मालिश करवाते थे। कोठारिन जी, शिवनाथ बाबू आ रहे हैं, यहाँ एक चरखा सेंटर खुलवाना है, कुछ मदद दिया जाए।
चरखा सेंटर? इसमें क्या होगा?
चरखा सेंटर में यही चरखा, करघा, धुनकी और बिनाई की टरेनी होगी।
गांव में तो रोज नया नया सेंटर खुल रहा है, मलेरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब ये चरखा सेंटर।
हाँ, नए जमाने में तो रोज नई नई बात होगी। सुनते हैं आपने सोशलिस्ट पार्टी की काफी मदद की है, लेकिन कोठारिन जी, गन्ही महात्मा का रास्ता ही सबसे पुराना और सही रास्ता है। नई नई पार्टी खुल रही है मगर किसी का रास्ता ठीक नहीं, सब हिंसावाद के रास्ते पर हैं।
सतगुरु हो, सतगुरु हो। कोठारिन, इसको जो चन्ना देना है देकर विदा करो। सतगुरु हो।
महंत साहब दर से छटपटाते हैं। बालदेव जी की नजर बड़ी मैली है। 10 रुपए का एक नोट निकाल कर देते हुए लक्ष्मी कहती है,
आजकल तो हाथ एकदम खाली है, आप तो आजकल इधर का रास्ता ही भूल गए, हमसे जो अपराध हुआ क्षमा कीजिए।
नहीं कोठारिन जी, आजकल छुट्टी ही नहीं मिलती है कभी, कपड़े की पुर्जी बांटने का काम क्या मिला, एक आफत में जान फंस गई, कांग्रेस का भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। उधर दूसरी पार्टी वाले को मौका मिल गया, कालीचरण दिन रात खटता है, हमारे कांग्रेस के मेंबरों को भी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लिया है, इसीलिए शिवनाथ बाबू को बुला रहे हैं।
चरखा सेंटर खुलेगा, एक पुराना काज करता बावन दास भी आ रहा है।
पुराना तो नहीं है, मेरे ही साथ सुराजी में नाम लिखाया था।
बावन दास बौना है,
सिर्फ डेढ़ हाथ ऊंचा, वैष्णव है, आएगा तो यहाँ ले आएंगे। जय हिंद, जय हिंद। बालदेव जी को फिर लक्ष्मी के देह की सुगंध लगी, कितनी मनोहर। लक्ष्मी देखती है बालदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं, बालदेव जी के दिल में जरा भी मैल नहीं, कितने सरल है। न जाने क्यों लक्ष्मी का जी आज बालदेव जी को देखकर इतना चंचल हो रहा है। बालदेव जी सच्चे साधु हैं, विरह की ओदी लाकड़ी सपुचाए और धुआए, दुख से तब ही बाची हो जब सकलौ जरी जाए।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।